समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जैसे कि मित्र रूपी श्रोताओं के साथ हमारा सच्चा रिश्ता है और जिंदगी मजेदार है। इसी सुविचार के साथ एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए एहसास के साथ आइए शुरू करें समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं के स्वागत के लिए तैयार हैं उन्हीं के अपने रवि कपूर और शगुन चोपड़ा। तो स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
Namaskar Ravi and a very warm welcome to all our listeners who are tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. This is our daily news magazine program, Aaj Savere. And in the next half an hour, we will be providing you a lot of information that consists of national, international news, metro city updates, and we'll also be exploring the history related to today, that is 10th of January. So make sure listeners to stick around till the end. We'll begin with the headlines first.
जी बिल्कुल, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे लगभग 75 देशों से बड़ी संख्या में आए प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगी। बुधवार से शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार किसी प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी संगठन या संस्था को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
In Canada, Indian origin member of Parliament Chandra Arya has announced his candidacy for Prime Minister following the resignation of Justin Trudeau. Arya, a Liberal Party MP from Ottawa, has pledged to eliminate the consumer carbon tax and advocate for Canada to become a republic. Arya hails from Dwarlu village in Tumkur district, Karnataka, and immigrated to Canada in 2006. He was elected as the MP for Nepean in 2015 Canadian federal elections, securing re-election in both the 2019 and 2021 polls. He currently serves as a member of the Standing Committee on International Trade. Former Liberal MP Frank Bayliss is the only other declared candidate for the Liberal leadership.
प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वैश्विक विकास और भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत को जैव अर्थव्यवस्था आधारित बनाने के लिए 21वीं सदी में जैव प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन का समन्वय महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देश के जैव प्रौद्योगिकी परिदृश्य को परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री ने जीनोम इंडिया डेटा जारी करने की सराहना की और इसे अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
The 21st edition of the Third Eye Asian Film Festival will kick off in Mumbai today. The opening film will be the acclaimed Chinese drama The Black Dog, which won the Best Film Award at the Cannes Film Festival. A total of 61 films have been selected for the festival, which will run from today through the 16th of this month, with screenings scheduled in Andheri and Thane. The Asian Spectrum section will feature films from countries including China, Malaysia, Bangladesh, Kazakhstan, Tunisia and Bhutan, showcasing a wide variety of storytelling styles. South Korea will be highlighted in the country focus segment, with 6 of its films being showcased. Renowned lyricist and screenwriter Javed Akhtar will be honored with the Asian Cinema Culture Award, while journalist Rafiq Baghdadi will receive the Satyajit Ray Memorial Award.
प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित प्रवास की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए डिजिटल मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम होगा। आयोजन को सुरक्षित करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुफिया दस्तों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सतर्कता बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। विशाल महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित कैमरे ड्रोन कर रहे हैं। बाहरी घेरे से लेकर आंतरिक गर्भगृह तक एक 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू किया जा रहा है। 56 पुलिस स्टेशन, 13 अस्थायी स्टेशन और 23 चेक प्वाइंट के साथ प्रयागराज पुलिस तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को संभालेगी। 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ PAC, NDRF और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस जल पुलिस कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी भी तैनात की है। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
The Kumbhvani channel of Akashvani dedicated to Mahakumbh 2025 will be launched in Prayagraj, Uttar Pradesh today. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will launch the channel. The Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan will join the program virtually. During the program, Kumbh Mangal Dhun will also be launched by the Chief Minister. The Kumbhvani channel of Akashvani will broadcast many programs based on every activity of Mahakumbh from today until 26th February from 5:55 in the morning to 10:05 in the evening. Live commentary of Amrit Snan will be broadcast through the Kumbhvani channel. The program can be heard on 103.5 MHz frequency, the News on AIR app and Waves OTT.
और अब कुछ समाचार खेलों से। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कल शाम राउरकेला में वेदांत कलिंगा लांसर्स ने गौनासिका को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ कलिंगा लांसर्स 7 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
कलिंगा लांसर्स ने शुरुआती दुस्वप्नों को भुलाकर अपनी लय के अनुरूप प्रदर्शन आरंभ कर दिया है और कल टॉप 4 में अपनी जगह बना ली। दूसरे क्वार्टर में प्लेयर ऑफ द मैच बने अंतुआ कीना ने रक्षण की गलती का फायदा उठाकर बराबरी करवा दी।
और ये मौका अच्छा है, सर्कल एंट्री बनाने की कोशिश की और ये मिली है बॉल, जबरदस्त गोल।
33वें मिनट में लांसर्स के कप्तान जालेस्की ने हेंड्रिक्स के पास को रिसीव किया और शानदार तरीके से गोल कर 2-1 की बढ़त दिला दी। अंतुआ कीना,
कलेक्टिवली वाज अ गुड गेम, वी प्लेड रियली वेल, द टीम वाज देयर एंड वी आर ग्रोइंग, सो इट्स रियली नाइस।
आज शार्ची रार बंगाल टाइगर्स और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच मैच रात 8:15 पर खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुपम पाठक।
Well, staying in the world of sports, we also have news from badminton, cricket, football and tennis, so listen in.
In women's cricket, the first match of the 3 one-day international series between India and Ireland will be played today at the Saurashtra Cricket Association Stadium in Rajkot, Gujarat. The match will start at 11 a.m. Smriti Mandhana will lead the Indian team, while Deepti Sharma has been named the vice-captain. Ireland, on the other hand, will be led by Gabby Lewis, with all-rounder Orla Prendergast as her deputy. This marks India's first bilateral women's ODI series against Ireland since 2006. The two sides had last faced each other at the T20 World Cup in 2023, and the Indian women's team had won that contest by a margin of 5 runs. In the Malaysia Open Badminton, India's Chirag Shetty and Satvik Sairaj Rankireddy will take on Malaysia's Ong Yu Sin and Teo Yee in the quarterfinals at Kuala Lumpur today. Earlier, the 7th-seeded Indian duo defeated Malaysian pair of Ayub Azreen and Tan Wee Kyong in straight sets 21-15-21-15 in the round of 16. In Indian Super League football, visitors Odisha FC played out a 2-2 draw with hosts Chennai FC in Chennai last evening. Today, North East United will take on Punjab FC at the Indira Gandhi Athletic Stadium in Guwahati. The match is scheduled to begin at 7:30 PM IST. In World Table Tennis, star contender India's Srija Akula will take on the 5th-seeded Chinese player Chan Qinyu in the women's singles pre-quarterfinals at Doha today. The match is scheduled to begin at 1 PM IST. In boxing, Shiva Thapa, reigning welterweight champion, began his title defense with a dominant victory at the 8th Elite Men's National Boxing Championship in Bareilly, Uttar Pradesh yesterday. He defeated Inayat Khan 5-0 in his opening bout. Former World Youth Boxing Champion Sachin Sivach also made a strong start, securing a 5-0 victory over the Services Sports Control Board against Akshay. With Sangeeta Yadav's report, Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं शगुन चोपड़ा।
Absolutely, Ravi. We will begin with the updates from Chennai. The International Balloon Festival, held today at Thiruvidanthai, Kovalam near Chennai. This festival has been arranged by the Tamil Nadu Tourism Department in collaboration with the Global Media Box. The Tamil Nadu International Balloon Festival has been held for the past 10 years. The three-day festival have ground displays to tethered rides. The festival will also be held in Pollachi from 14th to 16th of this month. Staying with Chennai, Tamil Nadu government will establish an office facility for artificial intelligence-related developments in Coimbatore. Inaugurating the U-Imagine TN Summit at Chennai, Chief Minister M.K. Stalin said that the office facility will be built through a public-private partnership at 2 million square feet. He said that the state aims to grow in emerging technologies such as AI, blockchain and electric vehicle manufacturing, bringing inclusive and distributed growth. He told that around 10,435 teachers and 34,267 students have received training based on industry requirements. He informed that the Tamil Virtual Academy is developing natural language processing tools for AI efforts in the Tamil language and building tools like grammar correction software. Well, moving on to Bengaluru, Bangalore Political Action Committee, BPAC, in collaboration with Consulate General of Israel to South India, have collaborated to enhance educational infrastructure in government schools to bridge the digital divide in Karnataka. They have announced a donation of 10 advanced smart boards to government schools in Bengaluru. The smart boards represent cutting-edge technology that will transform traditional classrooms into dynamic, interactive learning environments. The boards are equipped to deliver a superior digital learning experience, fostering creativity and collaboration among students. The Malavareshwaram MLA Dr. C. Ashwath Narayan has thanked the Israel Consulate and Political Action Committee, which is BPAC, for donating the smart boards that will help better the learning process among the students. Now let's turn our attention to Hyderabad. The Telangana State Police has introduced a citizen feedback system to improve public satisfaction with its services. During the virtual launch event, Director General of Police Dr. Jitendra and other senior officers, including Cyberabad Police Commissioner Avinash Mohanty, have stressed the importance of accountability and transparency. The initiative is designed to gather opinions from the public on their interactions with police services through QR code-based surveys and outbound calls. Citizens can scan QR codes displayed at police stations and other locations or provide feedback through the Citizen Feedback Call Center managed by the Center of Excellence, CID. Citizens are also invited to share suggestions for improving the feedback process. So listeners, these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Ravi will be sharing the updates from Delhi, मुंबई एंड कोलकाता।
बिल्कुल शुगुन, डाल लेते हैं नजर राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उम्मीदवार 17 जनवरी तक अपने नामांकन पत्र भर सकते हैं। इस महीने की 20 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए अगले महीने 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है। इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 19,000 से ज्यादा होर्डिंग्स और 1,00,000 से ज्यादा पोस्टर हटाए हैं। निगम ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे 9,000 से ज्यादा झंडे और 4,000 से अधिक साइनेज बोर्ड भी हटाए हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। भारत में अमरीका के राजदूत एरिक गार्स्टी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमरीका एकजुट हैं। मुंबई में कल एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने वैश्विक शांति के लिए कूटनीति और आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया। चलते हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आज आधिकारिक उद्घाटन होगा। सागर मेला बृहस्पतिवार को शुरू हुआ। राज्य सरकार ने गंगा सागर मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। कोलकाता में पुलिस ने बाबूघाट कैंप पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पूर्व रेलवे 12 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। राज्य परिवहन विभाग भी विशेष बसें चला रहा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग गंगा सागर पहुंचने लगे हैं। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और शगुन के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो शगुन, सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात कर लेते हैं। और आज मैं आ रहा था तो बहुत ज्यादा कोहरा मिला आपको?
जी जी, डेफिनेट वाज डेंसली फॉगी आउटसाइड टुडे एंड लेट्स टेक दिस मोमेंट टू टेल आवर लिसनर्स टू टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग दिस कोल्ड वेव एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम टू ड्रेस वार्मली इनफ।
जी बिल्कुल। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सुबह धुंध रहेगी और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। बात करें तापमान की तो न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शगुन,
यस रवि, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग इन द मॉर्निंग एंड मिस्ट एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have mist again. The minimum temperature was 19 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 13 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius.
और अब बारी है इतिहास के पन्नों को पलटने की। right. लेकिन उससे पहले हम श्रोताओं को जानकारी दे दें शगुन कि आज वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। देश में 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वैसे विश्व हिंदी दिवस के अतिरिक्त 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे हिंदी दिवस पर शगुन मन से यही उद्गार निकलते हैं कि मुख से निकले तो धार है जिसमें परिभाषित पूरा संसार है, शब्दों में तात्पर्य और वाक्यों में उभार है, उस हिंद का आभार है जो हिंदी हमारा आधार है। और अब
ब्यूटिफुल लाइन्स दीज आर,
बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी रवि, हिंदी लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम यू नो टू कनेक्ट एंड क्रिएट यूनिटी अमंग पीपल एंड इट इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ कल्चरल हेरिटेज बट प्राइड ऑफ आवर कंट्री।
बिल्कुल, बहुत गर्व का विषय रहता है जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में ही हम
संवाद करते हैं।
और अब फाइनली जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Now let's take back our listeners way back in time. In the year 1818, the last battle was fought in Rampura between the Marathas and the company.
1836 में आज के दिन प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने अपने चार छात्रों के साथ मिलकर पहली बार मानव शरीर का विच्छेदन कर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया और 1839 में आज ही के दिन भारतीय चाय पहली बार इंग्लैंड पहुंची और 1863 में आज ही के दिन लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा शुरू हुई थी।
In the year 1897, Wilhelmina Hafkin, famous scientist, inoculated himself with vaccine against plague publicly just to demonstrate the harmlessness of the product in Bombay.
और 1946 में आज के दिन लंदन में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक में 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
Just going a little back, in the year 1922, Museum of Prince of Wales, which was situated at Mumbai, was opened for the public. In the year now 1953, opening ceremony of Centre for Scientific and Industrial Research was held. In the year 1955, the Auxiliary Air Force Squadrons were equipped with the HAL-designed HT2 trainer officially, which was introduced into service. Now talking about the year 1963, Gold Control Measures Plan was started by the Government of India.
और अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है राधा विनोद पाल का, जो टोक्यो जापान युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भारतीय न्यायाधीश थे। आपका जन्म 27 जनवरी 1886 और निधन आज ही के दिन यानी 10 जनवरी 1967 को हुआ था। आपने अन्य न्यायाधीशों के साथ ये दावा करते हुए असहमति जताई कि मुकदमा युद्ध के विजेताओं द्वारा प्रतिकार में एक अभ्यास था और जापान के युद्ध के समय के नेता दोषी नहीं थे। दरअसल शकुन, राधा विनोद पाल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के विरूद्ध टोक्यो ट्रायल्स नामक मुकदमा शुरू किया, तब उन्हें इसमें न्यायाधीश बनाया गया था।
Now let's talk about novelist, short story writer and playwright Harry Sinclair Lewis. He has received the Nobel Prize in Literature, which was awarded for his vigorous and graphic art of description and his ability to create with wit and humor that are new types of characters. He wrote 6 popular novels, two of them which I'm going to name, Main Street and Aerosmith.
और अब बात करते हैं एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध गिरिजा कुमार माथुर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 22 अगस्त 1919, लेकिन इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 10 जनवरी 1994 को। लंबे अरसे तक इन्होंने आकाशवाणी की भी सेवा की थी। इनकी कविता में रंग, रूप, रस, भाव तथा शिल्प के नए नए प्रयोग रहे और इनके मुख्य काव्य संग्रहों में शामिल हैं नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, मैं वक्त हूं के सामने तथा छाया मत, छूना मत आदि।
जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बासु चटर्जी। नाउ
जयंतियों में आज जी सबसे पहला नाम है बासु चटर्जी का, जिनका जन्म हुआ 10 जनवरी 1927 और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 6 जून 2020 को। बासु चटर्जी हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक रहे। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बासु भट्टाचार्य का सहायक बनकर की। बासु भट्टाचार्य और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की तरह बासु चटर्जी की फिल्में भी हल्के मूड वाली मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियां होती थीं और वे अपनी फिल्मों में शादी और प्रेम संबंधों पर ज्यादा जोर देते थे और इसके अलावा उनकी फिल्में सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर भी बातचीत करती थीं। हमारे पास उनकी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, सुन लेते हैं।
जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, थोड़े गम है।
Also known for films Us Paar, Choti Si Baat, Rajnigandha, Piya Ka Ghar, Chameli Ki Shaadi and many more.
अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं एक ऐसे पार्श्व गायक के बारे में शगुन
जी,
जिनके बारे में मशहूर गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें आंखें मिलेंगी तो वे सबसे पहले येशुदास को देखना चाहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं कट्टा सेरी जोसेफ येशुदास के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। येशुदास का जन्म हुआ 10 जनवरी 1940 कोचीन केरल में। वे कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध शास्त्रीय और फिल्मों के पार्श्व गायक हैं। उनकी सुरीली आवाज सुनने वालों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। 1961 में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले येशुदास ने हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, रूसी और अरबी भाषाओं में भी गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी है। और शगुन, दक्षिण भारतीय भाषाओं में उन्होंने कई सफल फिल्में भी बनाई, जैसे वड्डकुम नाथम, मधु चंद्रलेखा और पट्टनाथिल सुंदरन। और सर्वश्रेष्ठ गायन के क्षेत्र में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे देश के एकमात्र गायक हैं। और वर्ष 2002 में येशुदास को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। येशुदास के गाय गीत आज तक लोगों की जुबान पर छेड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो फिर सुन लेते हैं उन्हीं के गाय गीतों की एक बहुत ही मधुर मेडली।
जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, बिंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जाता तेरे। माना हो तुम बेहद हसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो
Now let's talk about another musician, Donald J. Fagen. He was the co-founder, lead singer, co-songwriter and keyboardist of the band Steely Dan. That was formed in the year 1970s, in the early 1970s, with musical partner Walter Becker. In addition to his work with Steely Dan, he has released 4 solo albums, beginning with The Nightfly, which was nominated for 7 Grammys, and he was also inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Now let's talk about Rod Stewart, another musician, rock and pop singer and songwriter. He's among the best-selling music artists of all time. His music career began in 1962 when he took up busking with a harmonica. He's known for his distinctive raspy singing voice, and in order to listen to his raspy voice, we are playing this beautiful song, Sailing.
To be near you, to be free, I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high.
और शगुन, आज ही जन्मदिन है जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन का, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं अपनी डांसिंग को लेकर। उनका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1974 को। उन्होंने विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित किया है और अपने नृत्य कौशल और अपनी एक्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी तरह जाने जाते हैं।
वेल, ही हैज पोर्ट्रेड अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल, एंड एज यू वर टॉकिंग अबाउट हिज डांसिंग स्किल्स, ही हैज बीन प्रेज्ड बाय द ऑडियंसेस। He has undoubtedly cemented his place as one of the most versatile actors from his debut in Kahuna Pyar Hai to unforgettable roles in Guzarish, Zindagi Na Milegi Dobara, Agnipath and Kabil. He has dazzled audiences with his acting range. And for you listeners, we have this very, very memorable song. So listen in.
ऐ मेरे दिल, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो न हम।
चलते चलते आज का विचार कि दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और शगुन चोपड़ा को आज से मेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
Thank you so much, listeners, for tuning in. We hope you have a superb day. Also, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much for tuning in.
Namaskar.